भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा। आप सब लोगों का श्री बरसाना धाम में बहुत हार्दिक स्वागत है। जय श्री राधे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। हम सब लोग कृष्ण भगवान को छोड़कर यहाँ पर भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे प्रयास में माया हमको झपट के पकड़ लेती है और अनेक प्रकार के दुख और कष्ट देती है। लेकिन ऐसे में भी जब जीव दुख का अनुभूति करता है और भगवान से फिर जुड़ने का प्रयास करता है तो फिर भगवान हमें बड़ी दया से उनकी कृपा देते हैं और अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं। वैसे ही हमारी यात्रा है ये कि भगवान की हमारे पर कृपा है बहुत। आज नव वर्ष का दिन है हिंदू संवत्सर के अनुसार, तो आप सबको नव वर्ष की बधाई हो। और ये राधा रानी के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि आप सबका नव वर्ष रहने वाला जीवन राधा रानी के कृष्ण भगवान के ध्यान में, भजन में, सेवा में, भक्तों की सेवा में ही बीते और कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे ये दोबारा न हो जाए। ये हमारी इस पवित्र धाम में बैठकर आपके लिए प्रार्थना है। साथ साथ में आज गोवर्धन पूजा का भी महोत्सव है, सबके लिए गोवर्धन पूजा की भी बधाई है। बहुत ही सुंदर दिन है आज का। हमारे पास कितना समय है? समय ही समय है क्या? ठीक है, एक बार पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पर लोग कृष्ण की चरणों की भक्ति और रज चाहते हैं। सारे ब्रह्मांड में जहाँ पर भी निर्माण भगवान ने किया है, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर भी जितने भी जीव हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी साधक हैं, जितने भी सिद्ध हैं, सब लोग श्री कृष्ण भगवान के चरणों के रज चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। यही बरसाना एक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं किसी और के चरणों की रज की याचना करते हैं। यह एक ऐसा ही एकमेव अद्वितीय ऐसा एक धाम है जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए आते हैं। न केवल आते हैं कि याचना करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, रज में रज स्नान करते हैं, रोते हैं, उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब यह है कि परम परम भगवान जो भी है, भगवान भी है, तो भी वो हमको सेवक भाव सिखा रहे हैं। सेवक भाव जो है वो भक्ति मार्ग का और भक्ति मार्ग के लक्ष्य का भी एक ही प्रधान स्थायी भाव है। मूलभूत स्थायी भाव भक्ति का सेवा भाव है। और राधा रानी भी श्री कृष्ण के द्वारा पूजी जाती है, राधा रानी का भी ध्यान भगवान स्वयं करते हैं, और वो राधा रानी भी श्री कृष्ण की सेवा करती है। और राधा रानी इतनी करुणामयी है कि न केवल श्री कृष्ण की सेवा करती है, वो श्री कृष्ण को चाहने वाले हर भक्त की सेवा करती है। तो ये मूल सिद्धांत हमको पता होना चाहिए जैसे हम बरसाने में आते हैं। यहां पर आना, ब्रजवासी लोग कहते हैं कि सखी भाव के बिना कोई यहां प्रवेश नहीं कर सकता है। सखी भाव का सार भी यही है, किम करह। सखियों के अनेक विभाग हैं, अनेक वर्गीकरण हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान पे होती है उसको कहते हैं किंकरी। किंकरी यानी किम करह, क्या करूं, एक ही प्रश्न होता है मन में, क्या सेवा की जाए। हाउ कैन आई सर्व यू बेस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दैट विल प्लीज यू। आपको प्रसन्नता के लिए क्या सेवा की जाए, और कोई अन्य भाव नहीं मन में होता है। तो स्वयं सखी भाव में कृष्ण भी यहां पर आते हैं। परम भगवान, परम नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक होने के बावजूद भी वो स्वयं भी यहां पर सखी भाव में आते हैं, और बाहरी रूप से चुनरी ओढ़ के भी आते हैं, सखी बनकर भी आते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत जरूरी है। हम लोग को किसी भी तौर पर यहां पर किसी प्रकार का आनंद लेने के लिए नहीं आना चाहिए। आनंद तो मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लेकिन वो आनंद मिलेगा जब हम सखी भाव, सेवक भाव, दासी भाव के अंदर आएंगे, तो आनंद तो मिलता ही रहेगा। आनंद के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन सबसे पहले बरसाने में आने के पहले वो जो मूड है उसको बनाना बहुत जरूरी है। हमारा मूड अगर गलत रहेगा तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको वो कृपा नहीं मिलेगी जो वो कृपा वो धाम दे सकता है आपको। तो ये धाम जो है वो अति उत्कट धाम है। जैसे कि आपके घर में कई कमरे होते हैं ना, कोई आंगन भी होता है घर के सामने, गाड़ी पार्किंग की जगह भी होती है, फिर उसके बाद में आंगन भी होता है, फिर उसके बाद बाहर की बैठक होती है, फिर एक हॉल होता है, फिर उसके बाद में किचन होता है, फिर उसके बाद में आपका अंतपुर होता है, शयन गृह। शयन गृह में सब लोग आ सकते हैं क्या? आपके नहीं आ सकते। जो आपके एकदम निकट मित्र है, निकट सखी है आपके, कोई एकदम बहुत हृदय का संबंध है आपका, उसको आप अंदर ले जाएंगे, बाकी सबको हॉल में ही चाय पिला के भेज देंगे। पोस्टमैन आया तो क्या करेंगे? वो भी वो गेट के बाहर उधर से उसको दूध वाला धोबी उसको वहीं विदा करेंगे। तो वैसे ही ये ब्रजभूमि जो है वो राधा कृष्ण का घर है, उनका निज धाम है ये, इस ओन हाउस। और यहाँ पर ये जो आप आए हो आज, ये एकदम अंतरंग स्थान है उनका, अति उत्कट लीलाओं का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसी राक्षस को भी प्रवेश नहीं दिया है। ब्रज में सब जगह राक्षस आए हैं, लेकिन बरसाना, नंदगांव, जावट, ये तीन स्थानों में राक्षसों को प्रवेश नहीं है। कारण क्या है उसका? क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण और सखा सखियाँ बहुत ही अंतरंग उत्कट लीला करते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, जिसमें राक्षसों की बाधा हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए, इतनी उत्कट होती है वो। बाकी वो गौचारण कर रहे हैं तो गौचारण के बीच में राक्षस आ रहा है, उसका वध हो रहा है, फिर नदी में स्नान हो रहा है, फिर भोजन कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं आगे। लेकिन यहाँ पर की जो लीला होती है उसके अंदर ऐसा व्यवधान नहीं आ सकता है, इतना अंतरंग स्थान है ये। राधा रानी ने अपने स्वयं के महाप्रताप से कंस को यहाँ पर कन्या बना दिया था जैसे वो प्रवेश किए थे, और 6 महीने तक यहाँ पर कंस को स्त्री बनकर, गोपी बनकर, मोटल्ली गोपी, नितंबिनी गोपी, कंसनी गोपी, ऐसे अलग अलग विशेषण है उनके लिए। हाँ, 6 महीने तक उनको कंडे लिपवाने पड़े, कंडे लिपवाए उन्हें, कंडे बनाए, सुखा के टोकरे में डाल के घर में जमा किए, गौशाला को साफ किया, रोते रोते, हाँ, बहुत रोए बेचारे वो। और गोपियां क्या करती थी उनको देखकर, तालियां बजाओ सब लोग। गोपियां रोज कंस को देखकर तालियां बजाती थी, वो बढ़िया अच्छा हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। रोज रोज राक्षस भेज के हमारे कन्हैया को कष्ट देते हैं, हाँ अच्छा हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारे लिए योग्यता थी वही हो गया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, बड़ी लंबी कहानी है, उसको संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि कंस को वो चीज़ प्राप्त हो गई थी जो हमारे में से हर व्यक्ति इच्छा करेगा कि हमको होना चाहिए। इसे समझो, आप लोग यहाँ पर आ गए और सब लोग गोपी बन गए समझो, तो क्या रोएंगे आप? अरे मैं क्या कहाँ फंस गया, मुंबई में अच्छा था, नौकरी करता था, अच्छे गाड़ी वाड़ी घूमता था, इधर कहाँ कन्या बन गया। सब लोग हम खुशी से नाचेंगे कि बिना किसी प्रयास के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। गोपियाँ क्या करती है? वही तो करती है, कंडे लिपवाती है, दूध निकालती है गाय का, मंथन करती है, मक्खन निकालती है, जमा करके रखती है, हाँ रोज गौशाला धोती है, गाय के साथ गाय को सेवा करती है। वो जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के लिए ब्रज में आकर गोपी रूप में सेवा करना। और कंस ने कितना पाप किया था, इतना पापी था वो, फिर भी उसको यहां पर आते ही गोपी बनने का भाग्य मिला। लेकिन क्या वो उसका आनंद ले सका? रोता रहा वो हमेशा। जो चीज गोपियां हर रोज, समझो दही का मंथन कर रही है, समझो गाय का दूध निकाल रही है, समझो गाय को धो रही है, तो क्या करते गोपियां उस समय? किसी को आइडिया है क्या करते हैं? गीत गाते हैं, गीत। कल क्या कृष्ण ने लीला किया था उसके बारे में गीत गाते हैं, मतलब खुशी खुशी आनंद से हृदय से भर के, हाँ हृदय में आनंद को संपृक्त करके वो गीत गा रहे हैं। कल की लीला को कविता में बुनकर गीत गाते हुए वो मंथन कर रहे हैं। यशोदा मैया क्या कर रही है, क्या पढ़ते हैं आप दामोदर लीला में, क्या कर रही थी वो? गीत गाते हुए छम छम कंगन की आवाज आ रही है और वो भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। इतना मग्न होकर एकाग्र मन एकदम भगवान की लीला में मग्न है और याद करते प्रेम से, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, स्तन से दूध बह रहा है याद में भगवान के, और दही मंथन किया जा रहा है। कितनी आनंद की अवस्था है, भगवान को स्तनपान करा रहे तो भी एकाग्र होकर मग्न होकर स्तनपान करा रहे, कितनी भाग्य की बात है। लेकिन ऐसा दिव्य भाग्य प्राप्त होने के बाद भी कंस रोता रहा, क्या कारण है उसका? उसकी मति भ्रष्ट थी। इसलिए अभी दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है? अरे भगवान सामने खड़े थे उसके, दूत बनकर विनती कर रहे हैं कि 5 गांव दे दो, तो क्या बोलता है? सुई की नोक पर जितनी जगह होती उतनी भी नहीं दूंगा। ऊपर से बोलता है इसको अरेस्ट करो, ये बहुत चेटुक है, मायावी है। क्या प्रॉब्लम था उसका? मति भ्रष्ट थी उसकी। कर्ण का भी यही प्रॉब्लम था, दुशासन का भी यही प्रॉब्लम था, धृतराष्ट्र का भी यही प्रॉब्लम था। सबको भगवान के दर्शन हुए लेकिन क्या लाभ हुआ? 0। तो भगवान के दर्शन होने पर भी लाभ होना है कि नहीं होना है, ये किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में होता है। भगवान की कृपा होने पर भी खुश होना कि दुखी होना, ये हमारे हाथ में होता है। इसलिए मैं पहले ही ये बात बता रहा हूं आपको कि यहां पर कृपा तो बरसती रहेगी आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर उसका परिणाम तब दिखेगा जब आपकी मति जो है वो सन्मति होगी, सही दिशा में होगी, सही तरह की सही योग्यता की मति होगी, तो उसका पूरा असर आप पे मिलेगा। इसलिए इतनी बड़ी कृपा होने पर भी कंस रोता रहा और बार बार सोचता रहा कहाँ कैसे यहाँ से भागूं मैं, ये कैसा शाप मिला है मुझे, ये कैसा कष्ट है, ये कैसी संकोच है, कैसी पीड़ा है। इसलिए हम लोगों को ऐसे दुर्मति से बचना चाहिए और सन्मति लेकर ही यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बरसाना धाम को साधारण धाम नहीं है। पूरे जितने देवता हैं, जितने संत हैं, जितने महात्मा हैं, सब लोग सखी बनकर यहाँ पर आते हैं। शंकर जी महाराज भी यहाँ पर बिहार कुंड में आए थे और स्त्री के श्रृंगार कर रहे थे, तो गौरी जी वहाँ प्रकट हुई है, उसका नाम गौरी कुंड भी रखा गया है, गौरी का तेज प्रकट हुआ वहाँ पर। और गौरी जी ने फिर शंकर जी अपने पति को सखी का वेश पहनाकर श्रृंगार करके भेजा है। फिर शंकर महाराज गोपेश्वर महादेव बन के उन्होंने राधा रानी को पुकारा है, राधे राधे, सब लोग यहाँ पर पुकारते हैं और सब लोग स्त्री बनकर यहाँ पर आके पुकारते हैं। तो कंस जैसा दुर्भाग्य हम में से किसी का नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी के असीम कृपा से अभी यहाँ पर आने को मौका मिला है। तो शरीर से और मन से तो हम आ ही सकते हैं, लेकिन आत्मा से हमको यहाँ पर प्रवेश मिलना चाहिए। शरीर से टिकट निकाल के, रूम बुक करके वो सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन यात्रा जो होती है वो आत्मा की यात्रा होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग सबसे पहले हाथ जोड़िए और राधा रानी को प्रार्थना कीजिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एकदम स्ट्रेट आकाश में राधा रानी का मंदिर है, इसलिए हमको यहाँ बिठाया आपको। सबसे एकदम आगे देखिए पहाड़ पर राधा रानी का मंदिर का दर्शन है, भानु महल का। सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें आपके धाम में शरीर से प्रवेश दिया, अभी आपके धाम में हमको आत्मा से भी प्रवेश देना, हृदय से भी प्रवेश देना, कृपा करना। बिना राधा रानी की कृपा से कोई भी धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। राधा रानी इस धाम की अधिष्ठात्री है, अधिष्ठात्री मतलब जिसका अधिकार है पूरा, कृष्ण भी उनके अधीन रहते हैं। यहाँ पर कोई पुकारता है क्या ब्रज में, कृष्ण कृष्ण पुकारते कोई? सब लोग राधे राधे करते हैं, राधे राधे, जय श्री राधे। पत्ता पत्ता, डाली डाली, फूल फूल, यहाँ का जो है रज का हर एक कण जो है वो राधे राधे पुकारता है। ऐसी महिमा है यहाँ जगह की, इसलिए सब लोग यहाँ पर हर एक क्षण यहाँ पर हृदय की अंदर के कोने में राधा रानी की याचना करो, कृपा याचना करो। सब लोग बोलेंगे एक बार, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। महादेव शंकर जी ने इस सुंदर स्तोत्र का निर्माण किया है, राधा कृपा कटाक्ष, और ये बनाकर अपने पत्नी को भेंट दिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू गिव वाइफ, राधा कृपा कटाक्ष। क्या इसका मतलब है? हे राधे, कब कृपा करोगी, कब आपका कृपा भरा कटाक्ष मुझ जैसे पतित जीव पर पड़ेगा, और कब मेरा उद्धार होगा, कब मुझे आप अपना बनाओगी, कब मुझे मेरी सेवा स्वीकार करोगी। यही भाव में आपको पूरे समय चलना है, पूरे समय जितने समय आप ब्रज में हो। गुरुदेव ने कहा था कि ब्रज में प्रवेश करने से, मतलब स्टेशन से उतरते ही, उस समय से हर क्षण आपको हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की कृपा याचना करनी है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है, बिना राधा रानी के गोवर्धन यहां हो नहीं सकता। अभी गोवर्धन की पूजा है तो गोवर्धन के बारे में बोलना बहुत जरूरी है आज, लेकिन राधा रानी का कनेक्शन कितना गहरा है उनके साथ। ब्रज में, सॉरी, गोलोक वृंदावन में राधा रानी कृष्ण भगवान के बाएं अंग से उनका निर्माण हुआ है, और फिर राधा रानी की तरफ से फिर भगवान की पत्नियां, बाकी सारी गोपियां, इनका निर्माण हुआ है। फिर भगवान की तरफ से सखाओं का निर्माण हुआ है, धाम, गोलोक धाम की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कुंज निकुंज बनाए भगवान ने, उसके बाद में भगवान ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया गोलोक धाम में, तो जो उन सब गोपियों के आंसू स्वेद जमा हो गए और उसको एक बहुत सुंदर कुंड का स्वरूप प्राप्त हुआ। तो राधा रानी ने कहा कि इतना सुंदर कुंड है ये, तो सारे गोपियों के प्रेम प्रेम स्वेद और प्रेम अश्रुओं से बना हुआ है, क्यों ना हम उसको नदी का स्वरूप दिए दे दें। तो वो बनी जमुना देवी। फिर जमुना किनारे भगवान ने रास विलास किया गोपियों के साथ। फिर राधा रानी ने भगवान से कहा एकांत में कि अब मुझे ऐसी एक जगह चाहिए गौलोक में जो एकदम उत्कट हो, जो एकदम एकांत वाली हो, एकदम रहस्यमय हो। तो उस समय जब वो कह रही है, उस समय भगवान के वक्षस्थल से एक तेज निर्माण हुआ सबके आंखों के सामने, छाती से तेज निर्माण हुआ और वो गौलोक की पवित्र भूमि पर स्थिर हो गया और तुरंत उसका विकास होने लगा और वो एक पर्वत के समान आकाश में बढ़ने लगा, चारों ओर और आकाश की ओर, और वही गोवर्धन पर्वत है। वो निरंतर बढ़ते रहे, फिर भगवान ने उसको रोका, रोको रोको बस हो गया अभी, और रोको नहीं, और नहीं आगे जाना। तो वो स्थान जो पना पर्वत का, वो है गोवर्धन। करोड़ों करोड़ों मील आकाश में लंबा था वो, करोड़ों मील चौड़ाई में और लंबाई में था। और जब पृथ्वी देवी रोते हुए गई गौलोक में, चिरोदक्षाई विष्णु उनको गौलोक ले गए सब देवताओं के साथ, तब भगवान ने ऐलान किया कि हम आएंगे पृथ्वी पर, आएंगे और अवतार लेंगे और कंस जैसे राक्षसों का वध करेंगे। तो उसमें राधा रानी बेहोश हो गई, तो होश में लाया गया उनको। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गए आप, कि मुझे आप छोड़कर जाएंगे, ये भावना से मैं बेहोश हो गई। मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा, मैं आपको भी लेके जाऊँगा, मेरा जो ऐलान है, जो सूचना है देवताओं को, आपके साथ है, हम दोनों जाएंगे। बोले, हम नहीं आएंगे नीचे। जिस जगह पर ब्रजभूमि श्री वृंदावन नहीं है, जिस जगह पर जमुना जी नहीं है, जिस जगह पर गोवर्धन नहीं है, उस जगह पर हम नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, आपका ये मंतव्य, आपकी ये मति जानकर मैंने पहले ही गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा गोवर्धन और जमुना के साथ पृथ्वी तल पर भेज दिया है। आज आपको गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं पृथ्वी पर, जहां पर हम लोग उनको छोड़कर यहां पर आए हैं सुख भोगने के लिए। उस भूमि पर अगर दर्शन हो रहा है गिरिराज जी का, तो ये राधा रानी की कृपा है। अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं मन रखा होता, तो शायद नहीं होता ऐसे। तो राधा रानी इसका मूल है। और सब लोग जानते हैं कि गोलोक यहाँ पर उतरने के बाद में बहुत युगों तक, 3-3 युगों तक उन्होंने इंतज़ार किया भगवान के आने का, और फिर द्वापर के अंत में भगवान ने उतार लिया। फिर सब जानते हैं वो लीला, बहुत सुंदर। आज के दिन भगवान ने इंद्र की पूजा रद्द करके श्री गिरिराज को अन्नकूट का अर्पण किया, है ना। अन्न यानी सब व्यंजन, और कूट यानी पर्वत। सभी व्यंजन जो थे पर्वत के समान अर्पण किए। और अभी हम लोग कल शिफ्ट हो जाएंगे ना वहाँ पर, जहाँ पर हमारा अभी रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर आगे एक सामने ही एक कुंड है, दान निवर्तन कुंड कहते हैं। उस जगह से आन्योर गांव जो है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से लेकर आन्योर गांव तक पर्वत के पर्वत, पर्वत के पर्वत खचाखच भरे हुए व्यंजन लगाए गए। हम लोग कितना लगाते हैं, एक मेरे ख्याल से 2,500 स्क्वायर फीट के एरिया में व्यंजन लगाते हैं। और कितने फीट के पर्वत होते हैं, 1 फुट 1.5 फुट का होते हैं मैक्सिमम। उसके लिए कितना रात भर औरतें, माताजी, प्रभु जी लोग बनाते रहते हैं उसको, उसको लगाने में, निकालने में कितने घंटे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि दान निवर्तन कुंड से लेकर आनियोर तक खचाखच हौद भरे हुए थे खीर के और जूसेस के, और व्यंजनों के, लड्डुओं के और व्यंजनों के पर्वत लगे हुए थे, कई फीट लंबे थे वो। कितने व्यंजन बनाए होंगे, कितना धान लगाया होगा, कितना भक्ति लगाया होगा। फिर भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया, और सबसे पहली परिक्रमा जो है गिरिराज जी की, स्वयं भगवान ने लगाई। स्वयं भगवान ने अपने नेतृत्व में गिरिराज जी का महात्म्य बताते हुए सारे ब्रजवासियों को लेकर पूरी गोवर्धन की परिक्रमा की, और ये रिवाज शुरू हुआ भगवान की तरफ से। और गिरिराज की परिक्रमा जो होती है, वो गिरिराज जी का चरणों का वंदन है। परिक्रमा इज इक्वल टू वर्शिपिंग इज लोटस फीट। उसके बाद आप जानते हैं इंद्र का कोप हुआ, इंद्र ने वर्षा शुरू किया, फिर भगवान ने गिरिराज को उठाया। अभी गिरिराज उठाने के बाद में भगवान ने सारे ब्रजवासियों को गिरिराज के तले बुलाया वर्षा से बचाने के लिए, और चक्र को आदेश दिया कि इस तरह से घूमो गोल गोल गोवर्धन की ओर, एक भी बारिश की बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तो हम लोग जाते हैं बारिश को छतरी लेकर, तो क्या होता है, खाली सर पे थोड़ा बूंद नहीं आता, लेकिन यहाँ तक पानी आता है कि नहीं। चलो पानी में चलते, छतरी लेके चलते हैं, तो पानी तो गिर रहा है, छतरी से बाहर से गिर रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर आ रहा है। लेकिन गिरिराज जी के लीला में एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिर सका, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से नीचे नहीं गिरा। चक्र ने उसको बाष्प बना के आकाश में भेज दिया। और कहते हैं कि गोवर्धन के तले नीचे 7 दिन 7 रात सब भक्तों ने बड़ा आनंद लिया। हर समय भगवान जो है ना, वो एक एक लीला साथ में करते हैं, साखी लीला करते हैं गौचारण में। घर पहुंचते ही वात्सल्य लीला शुरू होती है, रात को गोपियों के साथ माधुर्य लीला करते हैं। ऐसे एक एक लीला एक एक क्षण पे होती रहती है, लेकिन पांचों रसों की, पांचों प्रकार की लीला एक साथ में इन कॉम्बिनेशन इज वन अनदर, एक साथ में गोवर्धन के तले 7 दिन तक होता रहा, एक ही साथ में इंट्रैक्शन हो रहा है माता के साथ, पिता के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ, गायों के साथ, मोरों के साथ, एक साथ में, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो उसमें भगवान ने गिरिराज को उठाया तो मैया बोलने लगी, बड़ी बड़ी गोपियां बोलने लगी, देखो मैं, मैया बोल रही है यशोदा माई, कि मैं जो है वो 100 गायों को मैंने अलग बना के रखा है, उनको मैं कमल के द्वारा जो सुगंधित घास है वो खिलाती हूँ, सेपरेटली मैंने वो फील्ड बना के रखा है जहाँ पर घास को उतरने को जो है वो कमल की खुशबू आती है। हम लोग केवल कल्पनाएं कर सकते हैं, हमारे भाग्य में तो है ही ऐसा सब। तो वो कमल जैसा घास खाने के बाद में वो गायों के दूध में कमल की खुशबू आती है, फिर वो दूध जमाते हैं, वो दही जमाते हैं, उसका मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, और भी कॉन्सेंट्रेटेड कमल की खुशबू वाला मक्खन निकलता है, और वो मक्खन भगवान को खिलाते वो स्पेशल, और वो दूध की मिठाई बनती है, जो वो दूध पे रखा था ना चूल्हे पे, वो दूध था, इसलिए वो भाग गई उसको उठाने के लिए। तो माता कहती है देखो मैंने इतना मेहनत किया ना, इतना आसान काम नहीं है, 100 गायों को अलग तरह से पैदाइश करना, उनको अलग तरह से खिलाना, अलग देखभाल करना, एकाग्रता से इसका जो मक्खन है और दूध है दही जो है वो मुझे कन्हैया को खिलाना है, ये भाव से इतना मेहनत कर रहे हैं, आज वो मेहनत काम आई, देखो उठा के खड़ा है। फिर भी सोच रही है कि ये हाथ थोड़ा मरोड़ दो, क्या हाथ तो चेंज करो, कम से कम इसका मसाज करो थोड़ा सा, सुबह से पकड़ा हुआ है, कुछ मक्खन नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, वो खिला भी रही है बीच बीच में। तो ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मैया को तो पता नहीं है कुछ, मैया तो अपना भाव में है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन असल कारण जो है गिरिराज को उठा के रखे हैं क्योंकि हमने उनको रोज कुश्ती का ट्रेनिंग दिया है, रोज जहां जहां गए वहां पर कुश्ती खेलते थे हम लोग, और रोज उसको परास्त करके उसको सिखाया हमने कैसे कुश्ती खेलना है, इसलिए उसके बाजों में इतना बल आया है हमारे ट्रेनिंग की वजह से, इसलिए वो इतना बड़ा गिरिराज को उठा के खड़ा है। तो बड़े जो गोप बाल है वो सोच रहे हैं कि ये सब बालक है, इनको क्या पता है, इतना बड़ा पर्वत अभी गिर जाएगा, चलो सब डंडे उठाओ और पकड़ो उसको जरा, सब डंडे उठा के रखे हैं, तो बालक का हाथ इतना छोटा सा है, वो दुखेगा, गिर जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो भगवान ने उनका भी भ्रम निकालने के लिए उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो सब लोग इधर ये नहीं नहीं ठीक है ठीक है, और ये तीनों का संभाषण गोपियां सुन रही है, राधा रानी भी सुन रही है। तो गोपियां आपस में संभाषण करती है, अरे तुम लोग बाल बाल बड़े हो, उल्लू के बट्टे हो, तुमको तो कुछ पता नहीं है, अपना ही कुछ सोचते रहते हो जो सत्य भी नहीं है। सही कारण तो ये है कि राधा रानी हमारे पास खड़ी है और वहां से तिरछी नजर से कन्हैया को देख रही है, वो उस नजर में जितनी ताकत है उसकी वजह से वो उठा के खड़ा है। आप लोग का मक्खन मक्खन खाते रहो आप लेकिन असल बात तो यही है, उसकी तिरछी नजर में, प्रेम भरी नजर में इतनी शक्ति है कि उनको देख रहा है, वो उनके नजरों को स्वीकार कर रहा है, उसकी वजह से इतनी शक्ति आ रही है उसके अंदर, ये तो इतना बड़ा पर्वत कौन उठा सकता है। तो ग्वाल वालों की बहस हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, हमने इतना ट्रेनिंग दिया वेस्ट जाएगा क्या। फिर जब गिरिराज को नीचे रखा, हाँ ये लोक वदंती है वैसे, जब गिरिराज को नीचे रखा गया और भगवान देख इंस्पेक्शन कर रहे थे यहाँ वहाँ कैसे डैमेज हुआ है कुछ हुआ है, तो तभी एक वाल गोपियों को मिलने जाते हैं, और हमको अभी तक शंका है मन में, प्रश्न था, अभी उसका हमको प्रूफ दिखा दो कैसे मुमकिन है ये। तो वो राधा रानी को लेकर सखियाँ ग्वाल बालों के साथ में गिरिराज के तलेटी में गई, और राधा रानी ने ऐसे देखा गिरिराज के बॉटम की ओर, और फिर उठाऊं तो नजर को उठाया तो गिरिराज आकाश में चले गए। सोच सकते हैं आप, ऐसे देखा, ऐसे ऊपर किया, जब तक ऊपर देख रही है तब तक पर्वत आकाश में, सब सखियां बोल रही हैं देख लिया ना अभी आपने कि पर्वत किसने उठाया है, वही शक्ति है जिस नजर से आज उठाया है, वही नजर उसको भी शक्ति दे रही थी। अब नीचे रख दूं क्या, हाँ, फिर नीचे देखा फिर जमीन पर आ गए गौराज जी। अब सोच सकते हैं राधा रानी की शक्ति क्या है। वो कंस जो है ना वो डरता था कृष्ण से, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो बार बार राक्षस को भेज के मारने का प्रयास करता था, उसे अलग अलग खुद की योजना करके डेयरिंग तो करता था उसको मारने के लिए, लेकिन राधा रानी को बहुत डरता था वो, क्योंकि एक बार आके कन्या बन गया 6 महीना तो किसी को नहीं भेजा इसको, किसी को नहीं भेजा इधर, मतलब राक्षस को खुद नहीं आया समझो, किसी और को भेजने की भी हिम्मत नहीं की उसने, इतना डरता था वो। तो कौन शक्तिशाली है बताओ? श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी। राधा रानी महाप्रतापी है, जो सारे ब्रह्मांडों को, देवताओं को, हाँ, सृजन को, निर्माण को एक इच्छा मात्र से कंट्रोल में रखता है, उसको वो कंट्रोल में रखती है। जो अनंत काम देवों को केवल नजर से, केवल दर्शन से पिघला देता है, रणवारी में भी कामदेव के साथ युद्ध हुआ था, उधर भी वो परास्त हो गए, मदन टेर में भी वो पर पिघल गए, उसका नाम मदन मोहन पड़ा। साक्षात मदन भी, कामदेव भी उनके सौंदर्य को देखकर जो शर्माता है, पिघल जाता है, बेहोश हो जाता है। वो मदन मोहन जो है उसको भी मोहित करती है, वो ऐसे पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं जब वो राधा रानी को देखते हैं। सौंदर्य के लिए नहीं, उनकी शक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनकी शक्ति होने पर भी भगवान उस शक्ति के वश में रहते हैं। राधा रानी ने एकादशी का व्रत किया है, हम सबको पता होना चाहिए। सब गोपियां राधा रानी से पूछती हैं कि आप ऐसा क्या आपका रहस्य है जो आप कृष्ण को इतना अपने वश में रखती हो? तो राधा रानी ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उन्होंने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है कि मैं कैसे करती उसको पालन। उसके बाद में सब गोपियों ने भी एकादशी का व्रत करना शुरू किया। तो एकादशी का व्रत हम लोग तो वो भाव से नहीं करते कि हमको कृष्ण को वश में करना है, हम तो कृष्ण का फेवर चाहते हैं, उसका उनकी कृपा चाहते हैं, इसलिए उनका सेवा करते हैं, व्रत करते हैं। हमको उस भाव से नहीं करना चाहिए, ना गोपियाँ उस भाव से करती हैं, वो कृष्ण को केवल अपना बनाना चाहती है, कृष्ण की कृपा चाहती है, अनुकंपा चाहती है, इसलिए वो ये पूछती रहती है। तो ऐसे राधा रानी के धाम में हम लोग आए हैं, हाँ, और गिरिराज पूजन का, गिरिराज धरण का जो भी लीला है वो सब राधा रानी के ही कृपा का प्रकटीकरण है। तो इस तरह से राधा रानी का जो स्थिति है वो हमको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हमको बताएंगे आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी की पर्सनालिटी में कुछ विशेष गुण है, वो ये है उनकी करुणा। सबसे हमारे लिए रेलेवेंट, सापेक्ष जो उनका गुण है वो करुणा है, और वो करुणा इतनी अगाढ़ है कि हम जानते हैं अश्वत्थामा को इतना भयंकर शाप भगवान ने दिया, ऐसा पूरे इतिहास में कहीं भी नहीं है कि इतना भयंकर शाप स्वयं भगवान ने किसको दिया होगा। उसने उनका मणि निकाल दिया और बोला कि ये मणि जो निकाला मैंने, उसका जो घाव है वो कभी भी भरेगा नहीं, इसमें से हमेशा द्रव बहता रहेगा और कभी ये जख्म नहीं भरेगा, और इसमें से भयंकर वेदना आपको होती रहेगी, आप मरना पसंद करोगे कि मर जाए तो अच्छा है, लेकिन आप मरोगे भी नहीं और ये वेदना भी नहीं थमेगी, और दर दर भटकोगे ठोकरे खाते हुए, लेकिन ये दर्द कम नहीं होगा और ना आप मरोगे। कितना मतलब डिटेल में शाप दिया है, कोई उपाय नहीं दिया उसको, नज नो स्कोप टू इम्प्रूव टू फील बेटर, ऐसा कोई गोली नहीं बताया कि भाई गोली खाएगा थोड़ा कम हो जाएगा, कोई भी नहीं चारा रख रहा, सब तरह से ब्लॉक कर दिया। इतना दर्द होगा तो मरना चाहोगे तो मरोगे भी नहीं, जिंदा रहोगे, तड़पते रहोगे, इतना कितना वैष्णव अपराध किया था उसने, इतना भयंकर वैष्णव अपराध। अभी जब परमात्मा परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान किसको ऐसा शाप देते हैं, उसके लिए क्या, व्हाट इज हिज होप, क्या कहा जाएगा? वो ब्रह्मा के पास गया, कुछ करो, बोला ब्रह्मा जी, बोले सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा अपराध ही ऐसा है, और अपराध करने के बाद भी शाप किसने दिया तुमको, हमारे मास्टर है वो, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ आप, सॉरी सर। तो शिव जी के पास गए, चलिए पहले शिव जी के पास गए तो शिव जी ने भी ये बताया उनको, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को एक एक आशा है मेरे को, आप मतलब कोई ज़्यादा गारंटी नहीं, लेकिन एक आशा है कि आप बरसा नहीं जाओ, वहाँ पर श्री जी की आराधना करो। तो वो इधर आए हैं बरसाने के पास, गांव का नाम है पिपासा वन, उसको आज के भाषा में पिसाया कहते हैं। तो पिपासा वन में वो आए और उन्होंने भजन शुरू किया, रो रो के पश्चाताप में, सही भाव से रो रो के प्रार्थना किया उन्होंने। तो राजा रानी ने उनको दर्शन दिया और के दर्शन मात्र से उनका घाव तुरंत भर गया, पूरी वेदना से मुक्त हो गए वो। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ, अभी तुम दुख मुक्त हो जाओगे, अब यहीं रहो, ये हमारा प्रिय पिपासा वन है, यहाँ पर हम प्रिया प्रीतम रास रचाते हैं, प्यास लगने पर हमने दोनों ने कुंड बनाया है, राधा कुंड और श्याम कुंड, इसका जल एक दूसरे को पिलाते हैं और ये हमारा बड़ा प्रिय स्थान है। जब हम बहुत तृष्णा से व्याकुल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए तो यहाँ पर आकर हम लोग रास लीला करते हैं। इस वन की आप रक्षा करना। अश्वत्थामा वहीं पर उनका उद्धार हुआ है और वहीं पर वो विराजमान है आज भी, और संतों को दर्शन होते हैं उनके जो शुद्ध हृदय है। तो अश्वत्थामा जैसे होपलेस कैरेक्टर को भी उन्होंने होप दिलाया। हमारे भी अवस्था ऐसी है, मोस्ट होपलेस, लेकिन हमें भी आशा है, उस आशा को लेकर हम बरसाने आते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। जो लोग सब जगह मार खाते हैं, सब जगह ठोकर खाते हैं, सब जगह दुख भोगते हैं, सब जगह पीड़ित होकर आते हैं, उन सब लोगों को सहारा, सुकून, आशीर्वाद, आशा, प्रेम, कृपा सब यहाँ पर प्राप्त होती है। इसलिए सब देवता भी जो विद्वान हैं, सब शास्त्रों में पारंगत है, वो भी सब छोड़कर सखी बनकर यहाँ पर पुकारने आते हैं, राधे राधे बजाओ, राधे राधे बजाओ, राधे राधे, सब लोग पुकारो, राधे राधे, राधे राधे, सुन लो तेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, सुन लो तेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, सुन लो तेर हमारी ओ वृष भानु दुलारी, राधे 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 राधे, करो राधे 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 राधे, सब लोगों को असहाय होकर यहां पुकारना चाहिए। और हम सब जगह अगर निराश हो जाते हैं तो ये एक स्थान है आशा का, निराशा में भी आशा का किरण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसी राधा रानी यहाँ विराजती है। वो श्री कृष्ण के जब श्री कृष्ण का नामकरण विधि हुआ गुप्त रूप में गोकुल में, तो गर्ग मुनि आए थे, आप सब जानते हैं, आप उन्होंने कृष्ण का और बलराम जी का नाम रखा, उसका महत्व तो समझाया, आगे भविष्य बताया। तो उसके बाद में वो चुपके से उधर रावल में गए थे, गोकुल में आए थे, तो वहाँ से राधा रानी के महल में चुपचाप गए, आउट ऑफ प्लान। उनको पता था राधा रानी का भी अवतार हुआ है, तो वो रावल के वृषभानु महल में गए और दर्शन दिया उन्होंने। हरे कृष्णा, थोड़ा सा एक मिनट रुकना जरा। तो वहाँ पर उन्होंने वृषभानु महाराज को बताया ऋषभानु महाराज ने उनको पूछा कि हमारे घर में भी कन्या ले आई है, तो आप बताइए उसके लिए उपवर कौन होगा, अच्छा वर कौन होगा। तो वो उनका हाथ पकड़ के उनको जमुना तट लेके जाते हैं किनारे पे, और कहते हैं कि आपको पता नहीं है परम ब्रह्मांड नायक जो है वो श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में नंद बाबा के घर में जन्म लिया उन्होंने, और आपके घर में जो कन्या जन्मी हुई है ये उनकी परम आराधनी सखी है उनकी गोलोक वृंदावन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ ठीक, तो उस समय उन्होंने कहा उनको, गर्ग जी कहते देखो अखिल ब्रह्मांड पति गोलोक धामेश्वर जो सबसे परिपूर्ण है भगवान है कृष्ण, नंद बाबा के घर में जन्मे हुए। तो विश्वानु कहते हैं कि नंद महाराज बहुत भाग्यवान है, उनका भाग्य तो है वो अवर्णनीय है। तो फिर गर्ग मुनि कहते हैं कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है, उनके साथ में उनकी जो सखी है परम सखी वो भी गौलोक से आपके घर में आई हुई है। तो विश्वानु महाराज इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद से विभोर हो गए, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुला के रहस्य बताया, हे गर्ग मुनि मैं आपसे इतना ऋणी हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी कन्या का महिमा मुझे बताया, आप मुझे बताइए कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए, आपको यानी आपका विवाह जो मेरी कन्या का श्री कृष्ण से मैं करूँगा वो आपको ही करना है पुजारी के रूप में पुरोहित के रूप में। तो उन्होंने कहा नहीं ये अधिकार मेरा नहीं है, भांडीरवन में स्वयं ब्रह्मा जी उनका विवाह करेंगे और देवताओं को भी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले साधुओं को साधना करने वाले संतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, और ये गोपियां जो है वो अनंत जन्मों की तपस्या करके जो प्रेम प्राप्त कर चुकी हैं यही केवल इनका दर्शन करने में आनंद लेती रहती है, यही इनका परम भाग्य है, वो राधा आपके घर में निवास कर रही है। फिर वृषभानु और कीर्ति देवी दोनों मिलकर गर्ग मुनि को प्रश्न करते हैं कि राधा जो शब्द है इसका अर्थ समझाइए। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं गंधमादन पर्वत पर एक बार गया था मेरे शिष्यों को लेकर, तब मुझे भगवान नारायण के दर्शन हुए और उन्होंने वहां पर मुझे साम वेद का सार समझाया, उसमें उन्होंने ये शब्द का अर्थ मुझे समझाया था। सब लोग ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं र यानी रमा लक्ष्मी जो हम श्री भी कह सकते हैं श्री, आ यानी गोपियां जो लीला करते हैं भगवान के साथ में, तो आ का अर्थ एक लीला भी है, और आकारोस्मी ऐसे गीता में कहा गया है कि आकार जो है ना हम गाते हैं ना वो आकार जो है वो कृष्ण है, तो संगीत में आलाप लेना यानी कृष्ण को ही पुकारना है, तो वो जो आ है लीला समान है वो गोपियों का स्वरूप है, तो र और आ रा हो गया। फिर ध जो है वो धरणी यानी भूमि की प्रतिनिधि है यानी भू, हाँ, और दूसरा जो आ है वो विरजा नदी का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि भगवान की ये चार गौलोक की पत्नियां हैं श्री लीला भू और विरजा, ये चारों पत्नियां दिव्य कुंज में गई हैं गौलोक में और सब जाकर राधा रानी के स्वरूप में विलीन हो गई हैं, इसलिए इसको परिपूर्णतमा कहा गया है। जो व्यक्ति राधा कृष्ण के नाम को पुकारता है, हम सब लोग यहाँ पर भक्ति में आने के पहले साधुजन क्या करते हैं, चार पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गर्ग मुनि बता रहे हैं कि इनका नाम पुकारने से चार पुरुषार्थ बहुत क्षुद्र हो जाते हैं यानी इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। पंचम पुरुषार्थ जो है चैतन्य महाप्रभु ने बताया प्रेम पुमार तो महान, ये पंचम पुरुषार्थ जो है बड़ी ही सहजता से इस राधा और इस कृष्ण का नाम लेने से हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जाके वर्णन आता है कि रा उच्चारण करने से खरबों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु और रोग से मुक्ति हो जाती है, और माता के गर्भ का वास जो है उसका भी कष्ट होता है, उसका भी नाश हो जाता है। अभी गर्भवास मतलब नहीं मिलेगा आपको, गर्भवास में जाने की जो संभावना है हमारे कर्मों की वजह से, वो राधा का नाम लेके नष्ट हो जाएगा केवल रा बोलने से, बाय द वे। और धा बोलने से क्या होगा, भव बंधन से मुक्ति हो जाएगी। और धा बोलने से और क्या होगा, धा शब्दम कुर्वतः पश्चातः कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। भगवान जैसे भाव विभोर होकर उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं जो राधा का नाम पुकारता है। अनंत जन्मों के कर्मों से इससे मुक्ति हो जाती है। राधा स्वयं कृष्ण कहते हैं मैं भाव विभोर होकर उस भक्ति के पीछे भागता हूं और उसको मुक्ति और भक्ति प्रदान कर देता हूं बड़ी इच्छा के साथ। तो ये राधा नाम जो है वो श्री कृष्ण की साधना का साधन है। आप जानते हैं ना, अभी हमारे मंदिर में वही अध्याय चल रहा है कृष्ण का दैनिक लीला मतलब दिनचर्या, उसमें वो रोज सुबह उठकर ध्यान करते हैं। उसमें तो दिया है द्वारका के संदर्भ में कि वो नारायण का ध्यान करते हैं, लेकिन उसके अंदर की बात यह है कि द्वारका के ऐश्वर्य लीला में नारायण का ही नाम आएगा, लेकिन वास्तव में जब भगवान अर्जुन के साथ में भी कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो भी राधा के चिंतन में थे। किसी ने पूछा गोपाल कृष्ण महाराज को कि आपने वो दिल्ली के मंदिर को राधा पारसार्थी क्यों नाम दिया, राधा कहाँ पारसार्थी, पार्थ किधर, कुरुक्षेत्र कहाँ, पांडव हस्तिनापुर, क्या कनेक्शन है इसका। तो उन्होंने कहा कि वो कहीं भी जाएंगे राधा उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहती है। द्वारका भी गए तो रात को रोते थे वो राधा रानी का नाम लेकर, सब पत्नियां दे वुड बी वेरी अमेज्ड, क्या बात क्या है ऐसी, सर राधा रानी का प्रेम है। तो कभी भी कृष्ण के मन से ध्यान से वो हट नहीं सकती है। जब वो कभी गोपियां रास में अंग अभिमान करती है तो उनको छोड़कर अंतर्धान में हो जाते हैं, तो जाकर बैठ जाते हैं इमली तला एक जगह है वृंदावन में, वहां बैठ जाते हैं और क्या करते हैं देखो, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र वंदित। योगिंद्र कौन है, श्री कृष्ण। वो कालिंदी के तट पर जाकर ध्यान लगा रहे हैं। पदज ज्योतिर ध्यान पर सदा जपति याम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। किस पर ध्यान करते हैं, राधा रानी के दो सुंदर कमल चरण कमलों पर ध्यान करते हैं। और कैसे करते हैं, प्रेम और अश्रु से एकाग्रता से ध्यान करते हैं उसके ऊपर। केनापि अद्भुतम उल्लसद्र अतिरसा नंदेन सम्मोहिता। नंद के पुत्र को सम्मोहित कर देता है ये ध्यान। ये ध्यान सा राधेति सदा स्फुरतु मे विद्या परा द्वयक्षरा। तो राधा सुधा निधि का श्लोक है ये प्रबोधानंद सरस्वती जो वृंदावन के बड़े अति उत्कट प्रेमी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा थे, वो वृंदावन में आए और वृंदावन के प्रेमी बन गए। उन्होंने वृंदावन महिमामृत लिखा है, राधा सुधा निधि लिखा है, राधा रस सुधा निधि लिखा है। उसमें ये वर्णन आता है कि वो कृष्ण जिस राधा के चरणों पर हम ध्यान करते हैं उसको मैं वंदन करता हूँ राधा रानी को। इस राधा सुधा निधि के पहले श्लोक का वर्णन में ऐसा आता है कि राधा रानी खड़ी रहती है ऐसे, तो हवा आती है, हवा जमुना के ऊपर के बाष्प को लेके आती है ठंडक के लिए। जमुना के ऊपर जो कमल खिले हैं, जो सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिले हैं, उसके पूके सर सुगंधित बाष्प के साथ लेके आती है और मंद मंद बहती है। तीन चीजें होगी ना, शीतलता सुगंध और मंद, तीन चीजों को लेकर हवा आती है, राधा रानी के जो ऊपर का शॉल है उसको छूती है और वहां से परावर्तित होती है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर। तो वो जो हवा की दिशा है, जिस दिशा से वो हवा आ रही है राधा रानी के दुपट्टे को शाल को छूकर, उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, हवा को नहीं करते हैं, वो दिशा को करते हैं। कितना राधा रानी का स्थान कृष्ण के मन में श्रेष्ठ है। तो राधा रानी कृपा अधिष्ठात्री है। प्रेम जो हम सोचते हैं प्रेम, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, वो मूर्तिमान स्वरूप है प्रेम का। जो भी हम सोचते हैं हमारे अंदर भक्ति है, हम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भक्ति जो भी है नहीं है, वो सबका उगम राधा रानी है। सबके हृदय में भक्ति देने वाली भक्ति देवी राधा रानी है, भक्ति का स्रोत है, उगम है वो। और वो रस की भी अधिष्ठात्री है। इसका मतलब क्या होता है, भगवान जो है ना रस के भूखे हैं, वो उनको रसराज कहा गया है। तो सोचते हैं कि भगवान रस के सागर है, लेकिन रस का निर्माण राधा रानी की ओर से होता है। वहां पर आकर राधा रानी से रस की याचना करते हैं, रस का दान मांगते हैं, भिक्षुक बनकर दान मांगते हैं। फिर वो रस का पहला निर्माण बरसाने में होता है, फिर यहां से पूरे ब्रज में उसका प्रसार और विकास होता है। तो रस का जो पूरा अथॉरिटी है वो राधा रानी के पास है। राधा रानी महाभाव की भी उगम स्थान है। महाभाव जो है वो आठ प्रकार के भाव से बनता है, हाँ, रति, स्नेह, प्रेम, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और लास्ट वाला अलग मान। दोबारा बोलता हूं, रति, स्नेह, प्रेम, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और मान, इन आठ वस्तुओं से महाभाव बनता है। और केवल राधा रानी उसके अधिकारी है और राधा रानी के तरफ से वो कृष्ण को मिलता है, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर है, इसलिए जगन्नाथ जी के अंदर है, और कोई भी इस भाव का अधिकारी नहीं है। और वो महाभाव यहां प्रकट होता है बरसाने में। और देवी भागवत में लिखा है कि राधा रानी परम आदिशक्ति है और महाविष्णु की जननी है, महाविष्णु की माता है वो। जो महाविष्णु कृष्ण के अवतार हैं, जो कटाक्ष से योग निद्रा में सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब वो तीन गुणों पर अपना दृष्टि डालते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है दृष्टिपात करने के बाद, वो महाविष्णु की माता राधा रानी है। वो श्री कृष्ण की हृदय संजीवनी है। अगर रस को सागर के जैसा माना जाए और उसको मंथन किया जाए तो उसके से जो नवनीत निकलेगा, जो कितना संपृक्त होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, वो संपृक्त नवनीत जो है रस के सागर का, वो सब राधा रानी है। इस तरह से एक बहुत सुंदर बात शास्त्रों में बताई गई है। हम सब जानते हैं कि वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदये च वचाहम्। सब वेदों से किसको जानना है? भगवान को जानना है। लेकिन ये वेद निर्माण कैसे हुए? जब राधा रानी चलती है तो उनके नुपुर की ध्वनि होती है, उस नुपुर के ध्वनि से वेदों का निर्माण हुआ है। और ये वेद राधा रानी की कृपा है। रस प्रकाश, रस विकास, रस प्रचार, ये सब राधा रानी की कृपा से होता है। ये राधा रानी की कृपा इतनी जरूरी है कि ब्रह्मा जी जब निर्माण हुआ उनका, तो वो अज्ञान में, सब जानते हैं ना, अंधकार में थे, अज्ञान में थे, सोच रहे थे क्या किया जाए, कहाँ पे आया हूँ, क्या सेवा है मेरी, कुछ पता नहीं था। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कहकर उनके हृदय में पूरा ज्ञान विराजमान कर दिया। एवरीथिंग दैट इज टू बी नोन, जो भी जानने लायक है वो सब कुछ अनुभूति के साथ प्रकाशित कर दिया उनके हृदय में। तो उनको ये भी अनुभूति हुई कि सबसे अधिक कृपा कहाँ पर है, तो उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू किया। 60,000 साल सत्ययुग के पहले तपस्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर सेवा शुरू किया अपना, जो भी भगवान ने अंतर से प्रेरणा दिया था। सत्ययुग के अंत में दोबारा 60,000 साल तपस्या किया, कितने साल हो गए? 120,000 साल हो गए। उसके बाद कृष्ण ने दर्शन दिया, तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा पुरकृत युगस्यन्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि। शुरुआत में और अंत में 60,000 में ब्रह्मा जी भगवान को पुकार रहे हैं। फिर भगवान दर्शन देते हैं तो क्या कहते हैं, ममोपरि सदा त्वम ही रास क्रीडाम करिष्यसि, आप मेरे ऊपर रास क्रीड़ा कीजिए। वो ये कैसे हो सकता है, आपको पहाड़ बनना पड़ेगा, पत्थर बनना पड़ेगा। ऋषभानुपुरम गत्वा, अभी आप ऋषभानुपुर जाओ और वहां पर पत्थर बनो। आप जानते हो पत्थर बनने का मतलब क्या होता है? पत्थर बनने का मतलब होता है बिकम मिस्टर नोबडी, अस्तित्वहीन हो जाना। पत्थर पे क्या क्या होता है, कुत्ते बिल्ली हम सब लोग विष्ठा मूत्र सब और विसर्जन करते हैं उसके ऊपर, अपने गंदे पैर लेकर चलते हैं उसके ऊपर, क्या नहीं होता है पत्थर के ऊपर। पत्थर के लिए मतलब पत्थर को सबसे निर्जीव माना गया है। लेकिन ब्रह्मांड के पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ ब्रह्मांड इज ब्रह्मदेव, हम सबके परम पिता है वो, एवरीबडी, ये सब पेड़ जितने जीव है यहाँ पर सब उनके ही बच्चे हैं, सबके परम पितामह भगवान ब्रह्म है। वो ब्रह्म भगवान ब्रह्म सबसे ज्यादा अधिक ज्ञानी है वो, हम सब में से सारे संप्रदाय उनसे शुरू होते हैं, कितने महान है ब्रह्मदेव हमारे, हमारे संप्रदाय के भी प्रथम आचार्य वही है। और वो ब्रह्मदेव इस बरसाने में पत्थर बने हुए हैं, सोचने की बात है ये। वो जानते हैं पत्थर बनने के बाद केवल भगवान नहीं नाश करेंगे उनके ऊपर, सब लोग आएंगे, पापी लोग भी आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान सखियां और सखा इनकी लीलाओं को दर्शन करने के लिए, उनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए यहां पर पत्थर बने हुए हैं। इसलिए आप सबको विनती है, अभी आप हाथ जोड़िए सब लोग यहां पर, और उस पहाड़ की ओर देखिए जो ब्रह्मा जी का एक शीश है, हाँ भानुगढ़, प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद जी, उनके संप्रदाय में कुछ 47 गुरु जी हैं बीच में, उसके बाद आपका नंबर है सबसे पहले, और आप यहाँ पत्थर बन के खड़े हैं, हम आप पर चढ़ने वाले हैं अभी, क्षमा चाहते हैं, हमारी योग्यता नहीं, हम पापी हैं, पतित हैं, बुरी मति से भ्रष्ट हैं हम, लेकिन आप हमें कृपा करना, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना और ऊपर जाकर एक काम करना, ये ध्यान में रखना कि हम ब्रह्मा जी के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए मन में कोई विकल्प, कोई प्रजल्प, कोई बुरा विचार, कोई पाप विचार, कोई यहाँ वहाँ की बातें मत करना। एक बात ध्यान रखना कि आप ऊपर जाने की परमिशन एक ही भाव से है, अगर आप वो पश्चाताप माफ़ी की भावना लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे विचार क्या है, हम श्री जी का दर्शन करना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो हमारे ऊपर चढ़ने की कोई काम ही नहीं, हम किस झाड़ की पत्ती हम ऊपर जाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ये कृपा करने को तैयार हैं हमारे ऊपर। शिव जी महाराज भी पत्थर बने हुए हैं नंदगांव में, सखाओं के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए। ये ब्रजभूमि इतनी पवित्र है, विष्णु भी यहाँ भगवान पत्थर बने हुए हैं, गिरिराज गोवर्धन जो है स्वयं विष्णु है। शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अनसुया की परीक्षा करने गए थे। हाँ मैं आपको थोड़ा संक्षेप बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट में। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा करने गए थे अपनी पत्नियों के कहने पर, क्योंकि पत्नियों को उन्होंने कहा था कि अनसुया सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है, उनको लगा था कि वो खुद है, मतलब मैं ब्रह्मा की पत्नी हूँ, मैं विष्णु की पत्नी हूँ, शिव जी की पत्नी हूँ, हमारा नंबर होगा शायद उसमें। उन्होंने कहा नहीं आप लोग नहीं, उसके अंदर वो पृथ्वी पर एक अत्रि मुनि की पत्नी है, उसके पास ये सबसे बड़ी पतिव्रता है। तो उनको लगा कि अरे कैसे वो ऐसे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, आप जाओ परीक्षा करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा करने गए, लंबी कहानी एनीवेज, तो वो सिद्ध हो गए वहाँ पर, सब बालक बन गए ब्रह्मा मित्र महेश, उनके जल छिड़कने से नंगे रेंगने वाले बालक बन गए वो, और उनका सतीत्व सिद्ध हुआ। तो वो अटैच हो गए उससे माता के रूप में। तो पति पत्नियां ढूंढी ढूंढी आई वहां पर, बोले पति कहाँ है हमारे, बोले वो देखो खेल रहे वहां पर, हमको चाहिए हमारे पति, कई दिन से गए वापस नहीं आए, परीक्षा करने में लग गए इतने तो उधर ही रह गए विद्यार्थी के पास। तो फिर जल छिड़का अत्रि मुनि के कुंडल क्या कहते हैं उसको कमंडल से, और फिर वापस ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उन्होंने कहा नहीं आपको हमारी इच्छा है कि हम आप हमारी माता बनो, दत्तात्रेय के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बने हैं। लेकिन अनसुया ने कहा कि तुमने मेरी पतिव्रता धर्म की परीक्षा किया, मैं तुम्हारे पे शाप देने वाली हूँ, तुम तीनों पत्थर बन जाओ, इसलिए वो तीनों पत्थर बने। और प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथ से त्रेता में इनको यहाँ स्थापन किया है, अपने हाथों से, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तीन महासतियाँ थी जो वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गई, वहाँ पर वो चार बच्चे जो हमेशा रहते हैं वहाँ पर चतुष्कुमार, बहुत बड़े खरबों खरबों सालों के वृद्ध योगी है वो, भक्त है भगवान के, लेकिन वो चार साल की उम्र में रहते हैं नग्न अवस्था में। तो तीन महासती ने उनको ध्यान नहीं दिया, सीधा अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, तो तीन महासतियों को वो चार कुमारों ने शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगी, बड़ा दुख हुआ उनको। उसमें विष्णु भाग के बाहर आ गए, उन्होंने कहा ये शाप नहीं आपके लिए वरदान है, क्योंकि तीन मेरी महासतियाँ शक्ति जो है, तीन शक्तियाँ जो है वो पराशक्तियाँ आपके घर में जन्म लेंगी। तो फिर तीनों महासतियाँ जो थी वो नीचे आई, उनका जन्म हुआ, और एक बनी पार्वती की माता मेनका, दूसरी बनी सीता देवी की माता जनक महाराज की पत्नी, और तीसरी बनी कलावती जिसका विवाह सुचंद्र के साथ में हुआ। सुचंद्र कलावती के जन्म में उन्होंने 12,000 वर्ष तपस्या किया, और फल के स्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो सुचंद्र ने कहा कि हमें मोक्ष दे दो, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी को ऊपर कलावती ने क्रोध किया, बोला ऐसे कैसे आप दे सकते हो मेरे पूछे बिना, मैं उनकी पत्नी मैं कहाँ जाऊँ, उनका मोक्ष तो आपने कर दिया। तो महासती के बल के प्रभाव से डर कर ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आप एक काम करो, जब तक आप हम दोनों आप मिलकर हमारे धाम में रहो, और यथावकाश आप राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसकी माता बनोगे, उसके बाद में फिर आप दोनों को साथ में मोक्ष दूंगा मैं, ऐसा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। नहीं तो शाप मिल जाना था ब्रह्मा जी को, तो वो कलावती जो है वो बुखारा देवी की गर्भ में इंदुसेन गोप और बुखारा देवी इनकी कन्या के रूप में द्वापर में राधा रानी कीर्तिदा के रूप में उनका जन्म हुआ। किसका? कलावती देवी का। और कीर्तिदा का विवाह वृषभानु महाराज से हुआ और उनको राधा रानी का कन्या के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। राधा रानी को एक भाई है श्रीदामा, एक बहन है अनंग मंजरी और बीच में राधा रानी है। तो ऐसा इनका फैमिली हिस्ट्री है इसलिए मैंने आपको सब कहानी बताई। तो राधा रानी के गुणों में सबसे जो गुण है राधा रानी का वो है करुणा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो हम सब लोग उस करुणा के याचक हैं, उस करुणा को आकर्षित करना चाहते हैं हमारी ओर, क्योंकि जब उनकी करुणा होती है तो कृष्ण भगवान को उस व्यक्ति पर कृपा करनी पड़ती है। एक मोर था जो नंदगांव गया, उन्होंने भगवान को पुकारना शुरू किया, हे गोपाल, हे गोविंद, हे नंद नंदन। बहुत देर तक रो रो के पुकारा उसने, लेकिन भगवान ने उस दर्शन नहीं दिया उसको। बहुत दुखी हो गया और लौट के बरसाना आ गया और यहाँ पर आकर राधे राधे पुकारा तो तुरंत राधा ने दर्शन दिया उसको। उस मोर को गोद में लिया, बहुत दुलारा प्रेम से, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। बोला, क्या बात है, नंदगांव गया मैं, इतना देर से पुकारता रहा लेकिन कृष्ण ने दर्शन ही नहीं दिया। बोला, अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको रहस्य की बात बताते हैं, अभी दोबारा नंदगांव जाओ, वहां पर जाके पुकारो, राधे राधे, प्रेम से पुकारो, राधे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, हे करुणामयी, हे दयामयी, हे वात्सल्यमयी, हे प्रेममयी राधे। फिर देखो क्या होता है, जैसे वो जाते हैं नंदगांव में पुकारते, पहली बार शब्द पूरा भी नहीं हुआ है, कृष्ण भगवान भाग के आते हैं, कौन मेरी प्रियतमा का नाम पुकार रहे हैं। वो तुरंत उस मोर को गोद में लेते हैं और हाथ से दुलाने लगते हैं, तो वो अति आनंद के विभोरता से उसके सारे पंख झड़ जाते हैं। तो वो अति आनंद में झड़े हुए पंख एक उठाते हैं और भगवान अपने सर पे लगाते हैं, तब से वो मोर मुकुटधारी बने हुए हैं। हाँ, ये राधा नाम की महिमा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे महामंत्र के कृष्ण के नाम के पहले हरे को रखा है ना। कितनी बार हरे आता है हमारे मंत्र में बताइए? कृष्ण का नाम कितनी बार आता है? राम का नाम कितनी बार आता है? तो मेजॉरिटी किसकी है? हाँ, इसमें भी ये बहुत ही रहस्य की बात है, हृदय से हमको हरे पुकारने के बाद ही कृष्ण हमारी ओर देख सकते हैं। हम कृष्ण का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उनकी कृपा का ध्यान हमारी ओर आना चाहिए, तो कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको देखेंगे वो, जैसे मोर को नहीं देखा उन्होंने, लेकिन राधा का नाम पुकारते ही तुरंत देखेंगे। समझो यहाँ पर बहुत माताएं और बहुत पिताजी लोग बैठे हुए हैं, समझो आपके प्रिय बालक का नाम कोई पुकार रहा है वहां पर, ए संतोष संतोष संतोष, तो पहले कौन देखेगा? उसकी माता और पिता देखेंगे, अरे मेरे बेटे को कौन पुकार रहा है ना। उस प्रकार से कृष्ण भगवान को राधा रानी इतनी प्रिय है, जो भी उसके नाम को पुकारता है तुरंत उसकी ओर देखते हैं, केवल देखते नहीं है, उस नाम पुकारने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर एक सुंदर भजन है, हाँ दो दोहे मैं आपको सुनाता हूँ। तू सिमरन कर सिमरन कर, तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तो ऐसा ये धाम है राधा रानी का, यहाँ पर सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हम यहाँ पर पीली पोखर के किनारे बैठे हैं। राधा रानी को दुर्वासा मुनि का वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके हाथ में जो भी बनेगा वो अमृत जैसा स्वादिष्ट होगा, जो खाएगा वो रोग से मुक्त होगा, हमेशा विजयी रहेगा। तो यशोदा मैया ने यह सुनकर राधा रानी के माता को विनती की थी और कहा था कि हमारे कान्हा के लिए आप वहां पर उसको भेजो। तो रोज वहां पर जाती थी और भोजन बनाती थी, तो वो देखकर उसके भाव को, प्रेम को, कुशलता को, सद्गुणों को देखकर वो बड़े प्रभावित हो गए एक दिन, और भाव विभोर होकर उसने अपने गले लगाया उसको, आंसुओं से नहलाया उसको, प्रेम के आंसुओं से, और भावनावश हाथों में हल्दी लगा दी उसके कि मेरी बहू बन जा। इस भाव से बोल नहीं रहे कुछ, खाली कृति कर रहे हैं। राधा रानी बड़ी खुश हो गई और जब शाम को लौटने का समय आया तो होश में आ गए कि अरे कैसे हो गया, अभी माता क्या कहेगी, बिना कुछ पूछे वाग निश्चय करके आ गए कन्या मेरी। तो बहुत डर गई वो लोग। ललिता ने उनको सुझाव दिया कि आप यहाँ हाथ धो लो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो राधा रानी ने अपने दिव्य करकमल, यशोदा के प्रेम के द्वारा संपृक्त हल्दी लगाए हुए हाथों को यहाँ पर धोया उन्होंने, तो ये पूरा कुंड जो है वो पीला हो गया। आज भी देखिए पूरा कुंड पीला है। तो सब ब्रजवासियों ने तर्क कर लिया कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। फिर राधा रानी उधर यशोदा को होश आया कुछ देर के बाद में, अरे मैंने क्या किया, क्या यही रिवाज है, ऐसे समझेगी मेरी दीदी की, दीदी क्या समझेगी कि यही रिवाज है नंदगांव के, किसी की लड़कियों को किसी भाने बुला लिया और बहू बना लिया अपना। हाँ हमारा तो संस्कार ऐसा नहीं है। तो बड़ी दुखी हो गई वो कि मैंने गलत काम किया, बाबा को बोलती है नंद बाबा को कि मैंने गलती की। हाँ गलती तो हो गई, अभी क्या करना है। तो यहाँ पर जब ही कीर्ति मैया ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई अच्छी बात है, तो एक एक बैलगाड़ी भर के मोती भेज दिए, तब जाके यशोदा को आनंद हुआ है कि हमने जो गलती किया है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मान्य कर लिया है। तो इस तरह से ये कुंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है। इसमें कृष्ण भगवान आते हैं उसके बाद में कुछ दिन बाद, वो देखते हैं कि कुंड पीला कैसे हो गया, पहले तो सफ़ेद था, मतलब पारदर्शी था। तो उसके उत्तर कृष्ण भगवान उतरे हुए हैं ये पूछते हुए कि ये पीला रंग कैसा है। जब उतरे हैं, बाहर निकले हैं, तो पूरे पीले रंग के हो गए, वो गौरांग महाप्रभु बन गए छोटी सी अवस्था में। तो बरसाना महाराज जी बताते हैं कि यही उनका पहला सूचना था कि मैं ऐसे आगे आने वाला हूँ। इसी कुंड के किनारे होली की शुरुआत होती है, इसी कुंड के किनारे पांडे जी को भेजते हैं नंदगांव से और संदेश भेजते हैं कि कल होली खेलने के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है नंदगांव की ओर से। तो पांडे को यहाँ पर पूरे रंग से भिगा देते हैं। राधा रानी बड़ी करुणामयी है, वो देखती है अकेले पांडे को सारी हजारों गोपियाँ भिगा रही हैं, परेशान कर रही हैं उसको, संकोच कर रही हैं। तो उनको बाहर निकालती है वो, और वो गीले रंग में भिगे हुए पांडे को घर ले जाती है, उसको नए वस्त्र देती है, स्नान गर्म पानी का, सुगंधित जल का व्यवस्था करती है, उसको नए वस्त्र देती है, शॉल देती है, पटका देती है, भोजन कराती है, उसका पूजन कराती है, फिर पालके में बिठा के उसको नंदगांव भेजती है। ये भी एक करुणा का स्वरूप है। यहाँ पर एक कुंड है भानुखर, किसी कल्प में उधर भी राधा रानी का जन्म हुआ है, किसी कल्प में यहाँ पर भी राधा रानी का जन्म हुआ है। तो उसमें कृष्ण एक बार आते हैं, उनकी करुणा का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे आ रहे हैं कृष्ण वहाँ पर और सब गोपियाँ स्नान कर रही है, तो कृष्ण पुकारते हैं कि ये जो बीच की लाली है वो किसकी लाली है, किसकी बेटी है। तो ललिता कहती है, अरे ये पागलों के गाँव से आया हुआ है, ये इन सब पागलों से बात नहीं करना चाहिए, हेलो हटो यहाँ से। तो राधा रानी को बड़ा दुख होता है, अरे तो खाली केवल पूछ रहा था वो किसकी कन्या हूं मैं, तो बताने में क्या तकलीफ है आपको, इतना कठोर वचन बोल दिया उसको बेचारे को, दुखी कर दिया उसको, ऊपर से पूरे गांव को पागल बना दिया आपने। हाँ जस्ट बाय आस्किंग वन क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, जाओ मैं आपके साथ स्नान नहीं करती। तो जानबूझ के वहां से हट जाती है और अलग जगह पर स्नान करने लगती है। तो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि राधा रानी ने कुछ ट्रिक किया है, तो वो भानुघर में डाइव मारते हैं, डाइव से अंडर वाटर जाके राधा रानी के चरणों को छूते हैं और जुप करके ऊपर प्रकट हो जाते हैं। तो राधा रानी बड़ी करुणामयी है, इस तरह से पांडे के हाल को देखती है और तुरंत उसको बचा लेती है। ललिता बहुत तेज है, राधा रानी बड़ा कोमल है, लेकिन जब राधा रानी पर संकट आता है तो ललिता देवी सामने आती है, तेज तेज तर्रार। तो एनीवे, तो यहां पर फिर पांडे जी को भेजने के बाद अगले दिन बड़े जुलूस में कृष्ण आते हैं और यहां पर होली का आरंभ होता है। यहीं से वो आप देख रहे हैं ना, यहाँ खड़े रहकर राधा रानी को पुकारते हैं, तो राधा रानी रूठी हुई रहती है, तो उसको ललिता मना रही है, विशाखा को इशारा करते हैं यहाँ पर जाओ उसको ले आओ। विशाखा भागती है, बोलती कन्हैया जी आए हैं, दूल्हा बनकर सज धज कर आए हैं, होली खेलने के लिए आए हैं। तो वो यहाँ से आप देखिए गौर से देखिए महल को, वहां के झरोखे में राजा रानी आती है और यहां से कृष्ण को दर्शन देती है, फिर तुरंत सज धज के उस सखिया उनको नीचे लेके आती है, फिर यहां पर होली का आरंभ जो है यहां पर होता है। तो ये पीली पोखर बहुत ही महान जगह है। ये जो प्रश्न पूछा था कृष्ण ने कि ये पीला रंग क्या है, वो पीला रंग क्या है, वो राधा रानी का प्रेम का संपृक्त आवरण है। संपृक्त क्या कहते हैं इसे, प्रकटीकरण है। इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड लव ऑफ राधा रानी। तो वो यहाँ कुंड में उपलब्ध है। आप लोग जब प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे, संभाल के करना, बड़े भक्ति भाव से करना, और यही प्रार्थना करना इस कुंड के पास कि वो जो पीली वस्तु जिसके लिए लालायित कृष्ण भी स्वयं लालायित हैं, वो भी स्वयं पूछ रहे हैं, वो भी स्वयं विस्मयचकित हो रहे हैं कि ये क्या वस्तु है जो इतना अद्भुत अनुभव मुझे दे रही है। वो पीली वस्तु क्या है ये समझने के लिए परम ब्रह्म भगवान ने एक पूरा अवतार डेडिकेट कर दिया। इज इट नॉट ट्रू? एक भाव को समझने के लिए, क्या भाव है इसको, मैं एक अद्भुत अनुभव प्राप्त कर रहा हूं उसके स्पर्श होने से। तो वो पीली वस्तु इस कुंड में उपलब्ध है। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, बड़े भक्ति भाव से आचमन कीजिए और राधा रानी को पुकारिए, थोड़ा बहुत एक अंश अणु मात्र हमें भी मिले, हम भी आपकी कृपा के भागीदार बन जाएं, हम भी कृष्ण की भक्ति कर सकें, हम भी अपने जीवन को धन्य कर सकें, हम भी इतनी गलतियां कर चुके हैं उसको माफ़ी मिल सकती है। इस भाव से आप इस पीले पोखर में प्रणाम कीजिए और हरे कृष्णा। इसके आगे हम, हाँ,